श्रोताओं, आप सभी का मार्गदर्शक कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इन दिनों में हम अंधेपन से बचने के लिए 7 कदम नामक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि इस कार्यक्रम से आपको बहुत आशीष प्राप्त हो रही है। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक मधुर गीत।
Thank you. Hello, listening friends.
नमस्कार श्रोता मित्रों.
We welcome you to this broadcast.
इस प्रसारण में हम आपका स्वागत करते हैं.
If you are joining us for the first time,
यदि आप पहली बार हमारे साथ शामिल हो रहे हैं,
we have just started a series of messages from 2 Peter.
तो हमने पत्रस की दूसरी पत्री में से ये संदेश श्रृंखला अभी प्रारंभ ही की है.
Last time we saw how Peter exalted new believers to beware of the teaching of false prophets.
पिछली बार हमने देखा कि कैसे पत्रस नए विश्वासियों को झूठे नबियों की शिक्षा से सावधान रहने की प्रेरणा देता है.
He told us that if we abide in the living truth,
उसने हमें बताया कि यदि हम जीवित सत्य में बने रहें,
they will keep us from stumbling.
तो ये हमें ठोकर खाने से बचाए रखेगा.
Today we will see another promise that Peter makes to all believers.
आज हम एक और वादे को देखेंगे जो पत्रस सभी विश्वासियों के साथ करता है.
It is found in 2 Peter chapter 1 verse 13.
ये पत्रस की दूसरी पत्री पहला अध्याय के 13 पद में मिलता है.
He said, "It is my pledge, as long as I am in this body, I will remind you of other things."
वो कहता है, मैं ये उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस देह में हूँ, मैं तुम्हें सब बातों का स्मरण दिलाता रहूँ.
Peter saying that I'm going to be a burr under your saddle.
पत्रस कह रहा है, मैं तुम्हारी काठी के अंदर की आवाज बना रहूँगा.
I am not going to give up on you.
मैं तुम्हारे लिए आशा नहीं छोड़ूंगा.
I am not going to stop reminding you.
मैं तुम्हें स्मरण दिलाना नहीं छोड़ूंगा.
Peter says, I am going to be these three things for you.
पत्रस कहता है, मैं तुम्हारे लिए ये तीन बातें बनने जा रहा हूँ.
I'm going to be an encourager.
मैं तुम्हें प्रोत्साहित करने वाला बना रहूंगा.
I'm going to be an exhorter.
मैं तुम्हें उपदेश देने वाला बना रहूंगा.
And I'm going to be an example.
और मैं एक नमूना बना रहूंगा.
Peter calls the body a tent. Because a tent is temporary dwelling.
पत्रस देह को एक तंबू कहता है क्योंकि तंबू एक अस्थाई निवास है.
When you live in a tent, it's usually a temporary existence.
जब आप तंबू में रहते हैं तो आमतौर पर ये एक अस्थाई निवास होता है.
When the time comes, you pull up the stakes and you move on.
जब समय आता है तो आप खूंटे उखाड़ते हैं और आगे चल देते हैं.
Sometimes you pull up stakes and go home.
कई बार आप तंबू उखाड़ते हैं और घर चले जाते हैं.
Our earthly body is a tent.
हमारा भौतिक शरीर एक तंबू है.
Through the years, my tent is going to get tattered and creased and faded.
समय गुजरने के साथ साथ मेरा तंबू फटेगा, घिसेगा और फीका पड़ जाएगा.
But then I'm going to fold it and I'll get a new one.
परंतु फिर मैं इसे तह लगाकर एक नया तंबू प्राप्त कर लूंगा.
That will be my new glorified body in Jesus Christ.
वो प्रभु यीशु में मेरी नई महिमित देह होगी.
In verse 14, Peter remembers what Jesus told him in John 21:18-19.
14 पद में पत्रस याद करता है जो प्रभु यीशु ने उसे योहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 18 और 19 पद में बताया था.
Let's read that.
आइए इसे पढ़ें.
Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God.
यीशु ने इन बातों से संकेत दिया कि पत्रस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा.
Then Jesus said to Peter, "Follow me."
फिर प्रभु यीशु ने पत्रस से कहा, मेरे पीछे हो ले.
Peter knows while he is writing this epistle.
इस पत्री को लिखते हुए पत्रस जानता है.
There is a matter of days, perhaps, before he dies and goes to be with the Lord.
कि शायद ये कुछ दिनों की ही बात है जब वो मर जाएगा और प्रभु के साथ रहने के लिए चला जाएगा.
But Peter does not feel sorry for himself.
परंतु पत्रस अपने लिए दुखी नहीं है.
In fact, the closer he gets to the day of the fulfillment of the Lord's prophecy about his death,
बल्कि जितना वो अपनी मृत्यु के बारे में प्रभु के द्वारा की गई भविष्यवाणी के पूरा होने के दिन के करीब पहुंच रहा है,
the more persistent he becomes in thinking about others.
दूसरों के विषय में वो उतना ही अधिक निरंतरता से सोच रहा है.
The closer he gets to the day of the fulfillment of the Lord's prophecy about his death,
जितना वो अपनी मृत्यु के बारे में प्रभु के द्वारा की गई भविष्यवाणी के पूरा होने के दिन के करीब पहुंच रहा है,
the more persistent he becomes in thinking about others' well-being.
उतना ही अधिक निरंतरता से वो दूसरों के भले के बारे में सोच रहा है.
As if Peter is saying, "Don't feel sorry for me."
जैसे कि पत्रस कह रहा हो, मेरे लिए दुखी ना हो.
My intense desire to see to it that you are established in the faith.
मेरी तीव्र इच्छा तुम्हें विश्वास में दृढ़ होते देखना है.
My goal for the remaining years of my life is to work harder than ever that your faith does not get out of kilter.
मेरे जीवन के बचे हुए बाकी वर्षों में मेरा लक्ष्य अधिक कठिन परिश्रम करना है कि तुम्हारा विश्वास बिखरे नहीं.
In Acts chapter 20, Paul says the same thing.
प्रेरितों के काम 20 अध्याय में पौलुस भी यही बात करता है.
None of these things move me. Either I count my life dear to me, that I may finish my course with joy and the ministry which I received from the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God.
इनमें से कोई बात मुझे नहीं डगमगाती, मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी दौड़ को और उस सेवा को आनंद के साथ पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है.
Do you know what the problem is for many believers?
क्या आप जानते हैं कि अधिकतर विश्वासियों के लिए समस्या क्या है?
They listen to the worldly prophets of doom and gloom too much.
वो विनाश और अंधकार के सांसारिक भविष्यवक्ताओं की बातें सुनते हैं.
They forget who is in charge.
वो भूल जाते हैं कि मालिक कौन है.
They think that God is only going to bless them in this life.
वो सोचते हैं कि परमेश्वर इस जीवन में उन्हें केवल आशीषित ही करता रहेगा.
But Peter reminds us of the eternal perspective.
परंतु पत्रस हमें अनंत काल का दृश्य स्मरण कराता है.
And when you learn to look at the eternal perspective,
और जब आप अनंत काल के दृश्य पर गौर करना सीख लेते हैं,
you will lose your grip on the things that don't matter in this life.
तो आपकी पकड़ से वो बातें छूट जाएंगी जिनका इस जीवन में कोई महत्व नहीं है.
But if you lose your eternal perspective,
परंतु यदि आप अपना अनंत काल का दृश्य खो दें,
you will lose your joy.
तो आप अपना आनंद खो देंगे.
If you lose your eternal perspective,
यदि आप अपना अनंत काल का दृश्य खो दें,
you will lose your fulfillment.
तो आप अपनी भरपूरी खो देंगे.
If you lose your eternal perspective,
यदि आप अपना अनंत काल का दृश्य खो दें,
you will lose your true identity.
तो आप अपनी असल पहचान खो देंगे.
In 2 Peter 1:15 he says,
पत्रस की दूसरी पत्री एक अध्याय के 15 पद में वो कहता है,
even after my death I will exhort you.
बल्कि मेरी मृत्यु के बाद भी मैं तुम्हें सिखाता रहूंगा.
He said, I'm going to leave some writings behind so that many times you will read them after my departure that they may continue to encourage you.
वो कहता है, मैं कुछ लिखित पीछे छोड़ जाऊंगा ताकि मेरे जाने के बाद कई बार तुम उन्हें पढ़ो कि वो लगातार तुम्हें उभारती रहें.
My listening friends, let me ask you a question.
मेरे श्रोता मित्रों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ.
What are you leaving behind as your legacy?
अपनी विरासत के रूप में आप पीछे क्या छोड़कर जा रहे हैं?
Peter is leaving words of encouragement and words of exhortation.
पत्रस प्रोत्साहन और प्रेरणा के शब्द छोड़कर जा रहा है.
Peter is leaving behind words of love.
पत्रस पीछे प्रेम के शब्द छोड़कर जा रहा है.
Why?
क्यों?
So that believers may not be led astray.
ताकि विश्वासी गुमराह न किए जाएं.
What are you leaving to your family and friends?
आप अपने परिवार और मित्रों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं?
Will they remember you as an encourager and a supporter and exhorter?
क्या वो आपको एक प्रोत्साहित करने वाले, सहयोगी और प्रेरणा देने वाले के रूप में याद रखेंगे?
Or will they remember you as critical and cynical?
या वो आपको एक आलोचक और कटु स्वभाव के व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे?
Will they remember you for your generosity and love for the work of God?
क्या वो आपको आपकी उदारता और परमेश्वर के कार्य के प्रति आपके प्रेम के लिए याद रखेंगे?
Or will they remember you for whatever money you're leaving them?
या वो आपके उस पैसे के लिए याद रखेंगे जो आप उनके लिए छोड़कर जा रहे हैं?
Why is Peter so positively persistent about reminding those Christians about the truth of the faith?
पत्रस सकारात्मक रीति से उन मसीहियों को विश्वास की सच्चाई के विषय में स्मरण दिलाने में निरंतर क्यों लगा हुआ है?
He lists three reasons.
वो तीन कारण बताता है.
They are to be found in 2 Peter chapter 1 verses 16 to 21.
ये पत्रस की दूसरी पत्री एक अध्याय के 16 से 21 पदों में मिलते हैं.
The first one is in verses 16 to 18.
पहला कारण 16 से 18 पदों में है.
Peter tells us that he has experienced these truths about Jesus firsthand.
पत्रस हमें बताता है कि यीशु के विषय में ये सत्य उसने स्पष्टता से अनुभव किए हैं.
Secondly, in verse 19,
दूसरा है 19 पद में,
the Holy Spirit is going to confirm to all believers the truth about the Word of God.
पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन का सत्य सब विश्वासियों के लिए यकीनी बनाने जा रहा है.
Thirdly, in verses 20 and 21,
तीसरा 20 और 21 पद में,
the Holy Spirit Himself is the author of the Word of God.
पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर के वचन का लेखक है.
These words of the Scripture are God-breathed.
वचन के ये शब्द परमेश्वर का श्वास हैं.
And Peter was crucified upside down because ही अपहेल्ड द ट्रूथ इन दीज स्क्रिप्चर्स।
और पत्रस को उल्टा क्रूस पर लटकाया गया क्योंकि उसने वचन के सत्य का समर्थन किया।
लेट्स लुक एट दोस थ्री थिंग्स वन एट अ टाइम।
आइए इन तीनों बातों को एक एक करके देखें।
फर्स्ट लेट्स लुक एट पीटर्स ओन एक्सपीरियंस।
सबसे पहले आइए पत्रस का अपना अनुभव पढ़ते हैं।
लेट्स रीड वर्सेस 16, 17 एंड 18।
आइए 16, 17 और 18 पदों को पढ़ें।
क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था, तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था कि उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई, जब उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। और जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे तो स्वर्ग से यही वाणी आते सुना, और हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, और तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे।
Peter knew that there would be false teachers who would deny the resurrection of the Lord Jesus Christ.
पत्रस जानता था कि ऐसे झूठे शिक्षक होंगे जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का इनकार करेंगे।
He knew that there would be false teachers who would say that the resurrection is only a matter of faith.
वो जानता था कि ऐसे झूठे शिक्षक आ जाएंगे जो कहेंगे कि पुनरुत्थान केवल विश्वास का मसला है।
They thought they saw and heard, but these things are not really historical fact.
उन्होंने सोचा, देखा और सुना, परंतु ये बातें असल में ऐतिहासिक तथ्य नहीं हैं।
And Peter is telling all believers, don't listen to these babbling idiots.
और पत्रस सब विश्वासियों से कह रहा है, इन बड़बड़ाते हुए मूर्खों की बात पर ध्यान मत दो।
He is saying, I followed him for 3 years.
वो कह रहा है, मैं 3 साल तक उसके पीछे चला।
He is saying, I know what James and John and I saw on the Mount of Transfiguration.
वो कह रहा है, मैं जानता हूँ जो याकूब, योहन्ना और मैंने रूपांतरण के पर्वत पर देखा।
It was real.
वो वास्तविक था।
I know that he told me that I would deny him 3 times before the cock crow, and I did.
मुझे पता है जो उसने मुझसे कहा था कि मैं मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार उसका इनकार करूंगा, और मैंने किया।
It was real.
ये असली था।
I know that after the resurrection, it was not my imagination.
मैं जानता हूँ कि उसके पुनरुत्थान के बाद वो मेरी कल्पना नहीं थी।
I entered into the tomb on that Sunday morning and it was empty.
उस रविवार सुबह मैं कब्र के अंदर गया और ये खाली थी।
It was real.
ये असली था।
I know that he came to the upper room and talked to me.
मुझे पता है कि वो ऊपरी कोठरी में आया और मुझसे बातें की।
And then he came back a week later to take care of Thomas's doubt.
और फिर एक सप्ताह बाद वो थोमा का शक दूर करने के लिए फिर वापस आया।
It was real.
ये असल था।
I know how he challenged me to feed the sheep, and that's what I'm doing right now.
मुझे पता है कि कैसे उसने मुझे भेड़ों को चराने की चुनौती दी, और इस वक्त मैं वही कर रहा हूँ।
Peter reminds us.
पत्रस हमें याद दिलाता है।
I am following his command in trying to encourage you.
तुम्हें उभारने का प्रयत्न करते हुए मैं उसकी आज्ञा पर चल रहा हूँ।
I am following his command in trying to uphold you.
मैं तुम्हें स्थिर करने का प्रयत्न करते हुए उसकी आज्ञा पर चल रहा हूँ।
I am following his command in trying to feed you the pure word of God.
मैं तुम्हें परमेश्वर का शुद्ध वचन खिलाने का प्रयत्न करते हुए उसकी आज्ञा पर चल रहा हूँ।
Then in verse 19 Peter said.
फिर 19 पद में पत्रस कहता है।
But it was not only my eyewitness account. Look at the prophecy of the scripture.
परंतु ये केवल मेरी ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं थी, वचन की भविष्यवाणी पर गौर करो।
Peter tells us that the word of God is like a light that is shining.
पत्रस हमें बता रहा है कि परमेश्वर का वचन एक ज्योति की तरह है जो चमक रही है।
But the light seems to be shining outside of our hearts.
परंतु ये ज्योति हमारे हृदयों के बाहर चमकती हुई लग रही है.
Inside your heart, you choose to sit in darkness.
आपके हृदय के अंदर आप अंधकार में बैठना पसंद करते हैं.
And what the Holy Spirit does when He sees a genuine desire from the heart to be illuminated and enlightened is this.
और जब पवित्र आत्मा हमारे हृदय में चमकने की और रोशन होने की एक सच्ची इच्छा देखता है, तो वो ऐसा करता है.
He comes like a magnifying glass.
वो एक सूक्ष्मदर्शी शीशे की तरह आता है.
And he concentrates the light of the word of God into your heart and illuminates it.
और वो परमेश्वर के वचन की ज्योति को आपके हृदय पर लगाकर उसे रोशन कर देता है.
And Peter is saying,
और पत्रस कह रहा है,
let the word of God and the spirit of God shine upon your heart.
परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के आत्मा को अपने हृदयों पर चमकने दो.
Let the word of God and the spirit of God give you hope until the return of the Lord Jesus Christ.
परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का आत्मा प्रभु यीशु मसीह के आने तक तुम्हारी आशा को कायम रखे.
Finally, in verses 20 and 21,
अंत में 20 और 21 पद में
Peter is saying, you can trust the word of God because it came from God.
पत्रस कह रहा है, तुम परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आया है.
Men may have pinned these words in the Bible.
बाइबल में दर्ज शब्द मनुष्यों ने चाहे पिरोए हों.
But the Holy Spirit edited every thought and every word.
परंतु हर विचार और हर शब्द पवित्र आत्मा का संपादित किया हुआ है.
Someone once said that when these men were writing the scripture, the Holy Spirit jumped in the ink.
एक बार किसी ने कहा कि जब ये मनुष्य पवित्र शास्त्र को लिख रहे थे, पवित्र आत्मा ने स्याही में छलांग लगाई.
In a day when there are so many false teachers and false prophets denying the authority of the scripture.
आज के समय में जब बहुत सारे झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता वचन के अधिकार को नकार रहे हैं.
Peter tells us that we need to stand firm on these facts.
पत्रस हमें इन तथ्यों पर दृढ़ता से खड़े रहने के लिए कहता है.
First, the words as originally penned by the 40 or more human writers were God breathed.
सबसे पहले ये शब्द मूलतः जैसे कि 40 या उससे अधिक इंसानी लेखकों के द्वारा पिरोए गए परमेश्वर के श्वास से निकले.
God did not just give them a general outline.
परमेश्वर ने उन्हें केवल कोई आम रूपरेखा नहीं दी.
God did not just give them the basic theme.
परमेश्वर ने केवल उन्हें मुख्य विषय नहीं दिए.
God did not tell them to write using their imagination.
परमेश्वर ने उनसे अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए लिखने के लिए नहीं कहा.
No. The Holy Spirit gave the very words that they wrote.
नहीं, उनका लिखा हुआ प्रत्येक शब्द पवित्र आत्मा ने उन्हें दिया.
Peter also tells us that the entire Bible was equally given by God.
पत्रस हमें ये भी बताता है कि सारी बाइबल परमेश्वर ने भी समान रूप से दी.
God gave us both the Old Testament and the New Testament.
पुराना और नया नियम दोनों हमें परमेश्वर ने दिए.
God gave us the Bible from Genesis to Revelation.
उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक सारी बाइबल हमें परमेश्वर ने दी है.
And all the hundreds of years in which the Bible was written, it's all consistent.
सारे सैकड़ों वर्षों में जिनमें बाइबल लिखी गई, ये पूरी एक सी है.
Paul said in 2 Timothy 3:16.
तिमोथियस की दूसरी पत्री 3:16 पद में पौलुस कहता है,
All scripture was written by the inspiration of the Holy Spirit.
संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया.
And it is profitable for doctrine, for proof, for correction, for instruction and righteousness.
और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है.
And in verse 21, Peter reminds us.
और 21 पद में पत्रस हमें याद दिलाता है.
For prophecy never had its origin in the will of man, but men spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit.
क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे.
Peter is telling all believers that we must stand firm in the scripture.
पत्रस सभी विश्वासियों से कह रहा है कि हमें वचन पर दृढ़ता से खड़े रहना आवश्यक है.
Only then can we build our seven-part structure in the will of God.
केवल तभी हम परमेश्वर की इच्छा में अपनी सात मंजिला इमारत बना सकते हैं.
It is my prayer that you begin to trust the word of God as it is the word of God.
Meri prarthna hai ki aap parmeshwar ke vachan par bharosa rakhna shuru kare jaise ki ye parmeshwar ka vachan hai.
And that you stand firm on it.
Aur ye ki aap is par dridhta se khade rahe.
It is historically accurate.
Aitihasik roop se ye bilkul yatharth hai.
It is factual.
Ye tathyatmak hai.
It is tested through the years.
Ye varshon se parkha gaya hai.
And not a mistake in it.
Aur isme ek bhi galti nahi hai.
I hope you begin to read the word of God consistently.
Main aasha karta hu ki aap parmeshwar ke vachan ko niyamit roop se padhna shuru karenge.
And until next time, I wish you God's richest blessing.
Agle samay tak main aapke liye parmeshwar ki uttam aashish ki kamna karta hu.
आशा है श्रोता कि आज के संदेश से आपको आशीष मिली है। यदि आप जीवित परमेश्वर के विषय में या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में अधिक जानना चाहते हैं, तो हमसे तुरंत संपर्क करें। और हाँ, अपनी प्रार्थना बिनतियाँ लिखना ना भूलें। यदि आप आपके विश्वास में सात साहसिक पग नामक पुस्तिका प्राप्त करना चाहते हैं, तो तुरंत हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है, कार्यक्रम मार्गदर्शक, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 22601 उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम मार्गदर्शक, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317 लखनऊ 226001 उत्तर प्रदेश। श्रोताओं, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mdhindi@radiovv.org mdhindi@radiovv.org। तो श्रोताओं, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।